16 भारतवर्ष के सूफी संप्रदाय। 3 भारतवर्ष के प्रमुख सूफी संप्रदायों का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि समय के बीतने के साथ उन संप्रदायों के भीतर अनेक उप संप्रदायों का आविर्भाव हुआ और सूफी साधकों के कितने समुदाय इस देश के चारों ओर फैल गए। सनातन पंथी इस्लाम के आचार विचार मान्यताओं आदि की दृष्टि से इन संप्रदायों और उप संप्रदायों के मोटे तौर पर दो विभाग किए जा सकते हैं। एक विभाग तो वह है जो सनातन पंथी इस्लाम के आचार विचार को बहुत दूर तक मानकर चलता है अथवा उसमें उसकी आस्था है और इस्लामी दुनिया के साथ उसका संबंध साधारणतः अच्छा है। यह विभाग बाशरा संप्रदाय वालों का है और इस विभाग में सभी प्रमुख सूफी संप्रदाय तथा उप संप्रदाय हैं। दूसरा विभाग उन उप संप्रदायों अथवा छोटे छोटे समुदायों का है जो इस्लाम के आचार विचार पर उतना ध्यान नहीं देते। इस विभाग वाले धर्म के मामले में बड़ी स्वतंत्र प्रकृति का परिचय देते हैं। इस विभाग वाले बेशरा के नाम से परिचित हैं। वे बेशरा संप्रदाय वालों पर सनातन पंथी इस्लाम की दृष्टि वक्र ही रहती है, फिर भी बेशरा संप्रदाय वालों का जनता में खूब प्रभाव है और उसकी जीवनचर्या को उन्होंने खूब ही प्रभावित किया है। इन बेशरा संप्रदाय वालों की प्रवृत्ति सनातन पंथी इस्लाम की उपेक्षा करना ही रहा है। प्रारंभिक सूफी साधकों के जीवन की ओर भी वे उन्मुख नहीं हुए। इन्होंने संतों की पूजा पर बहुत ध्यान दिया। नाना प्रकार के चमत्कार से लोगों को वे आकर्षित करते। उनमें नशा सेवन का खूब प्रचलन है। जिक्र की नाना क्रियाएं उनमें प्रचलित हैं। अध्ययन की आवश्यकता उन्हें नहीं महसूस होती। उनमें अशिक्षितों की संख्या अधिक है। इनके पीर अधिकांश अशिक्षित हैं। ज्ञान की उपलब्धि के लिए वे विद्या अध्ययन करना पृष्ठ संख्या 508 आवश्यक नहीं मानते। फलस्वरूप उनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो आचरण भ्रष्ट और ठग हैं। बाजारों में घूमते हुए जो मुस्लिम फकीर भीख मांगते फिरते हैं और नाना प्रकार के मंत्र तंत्र जादू टोना आदि के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं, वे बेशरा विभाग के अंतर्गत हैं। बेशरा संप्रदाय में एक दल ऐसा है जिसका नाम मजजूब है। ये मजजूब नमाज रोज़ा आदि में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, न पैगम्बर के चमत्कार में और न भविष्य जीवन के बारे में। जिस प्रकार से प्रमुख सूफी संप्रदाय जैसे चिश्ती कादरी आदि का संगठन है, उस प्रकार से इनका संगठन नहीं है। बेशरा संप्रदाय वालों के ठीक उन्हीं की तरह से विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग रखना कठिन है। साथ ही बेशरा और बाशरा संप्रदाय के साधकों में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो बाशरा हैं वे बेशरा हो जाते हैं और बेशरा भी बाशरा हो सकते हैं। कितने बेशरा संत इतने प्रसिद्ध और प्रभावशाली हुए कि उनकी गिनती बाशरा संप्रदाय के संतों में की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बताना अत्यंत कठिन है कि कौन सा बेशरा संप्रदाय किस प्रमुख सूफी संप्रदाय से आविर्भूत हुआ, लेकिन इतना अवश्य संभव प्रतीत होता है कि उनमें से कुछ का किसी न किसी प्रमुख संप्रदाय से संबंध रहा होगा। उस काल में ऐसी भी प्रवृत्ति रही है कि नया संप्रदाय चलाने के उद्देश्य से कोई लब्ध प्रतिष्ठित साधक अपने मूल संप्रदाय से अपने को विच्छिन्न कर लिए हुए था। बहुत से ऐसे भी बेशरा संप्रदाय हैं जिनका कोई सुचिंतित जीवन दर्शन नहीं है। इन संप्रदायों के आविर्भाव की कहानी कहना कठिन है। इन संप्रदायों के अनुयायियों में एक बात और देखी जाती है कि वे अपने धार्मिक क्रियाकलाप आदि को अत्यंत रहस्यमय बनाए हुए रहते हैं। उन्हें प्रकाश में नहीं आने देना चाहते। इन संप्रदायों का कोई लिखित साहित्य नहीं है। पृष्ठ संख्या 509 उनके अनुयायियों को गुरु परंपरा से संप्रदाय के रहस्य मौखिक रूप में प्राप्त होते हैं। बेशरा संप्रदाय के भी दो विभाग किए जा सकते हैं। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो किसी न किसी मुख्य सूफी संप्रदाय से अपना संबंध बताते हैं, लेकिन उनका आविर्भाव वास्तव में स्वतंत्र रूप से हुआ है। इस प्रकार के संप्रदायों का इतिहास कुछ न कुछ ज्ञात है, लेकिन बेशरा के दूसरे विभाग का संगठित रूप नहीं दिख पड़ता और न यही मालूम होता है कि कब से कौन सा संप्रदाय चला आ रहा है। इन संप्रदायों के संबंध में कुछ एक के बारे में ही कहकर संतोष कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी संख्या अत्यधिक है। इन्हीं में कलंदरी संप्रदाय वाले हैं। इस संप्रदाय वालों को वास्तव में संप्रदाय कहने में भी संकोच होगा। कादरी संप्रदाय के एक दरवेश का नाम शाहबाज़े कलंदरी था। इसी प्रकार से मौलवी संप्रदाय के भी एक दरवेश का नाम शमसुद्दीन तबरीजी कलंदरी था। दर पृष्ठ 94 इनका काम भीख मांगना है। भीख मांगने की कला में ये बड़े निपुण होते हैं। ये बंदर या भालू नचाया करते हैं। ये दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगते हैं। गांव वाले चाहे वे किसी धर्म के अनुयायी क्यों न हो, इनसे भय करते हैं। हिंदू मुसलमान ईसाई सभी इनकी आवाज़ सुनते ही भीख लेकर दौड़ते हैं। देरी होने पर वे शाप देते हुए चल देते हैं और समय पर भीख मिल जाने पर बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इनमें कुछ तो विवाहित होते हैं और कुछ अविवाहित। वे एकांत में शहर या गाँव के बाहर या भीतर फूस की झोपड़ियों में रहते हैं। ये अपना सिर मूछ दाढ़ी और भौंओं को मुड़वाए हुए रहते हैं। इनका प्रसिद्ध स्थान पानीपत है, जहां बू अली कलंदर का मकबरा है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक के संबंध में बहुत ही मतभेद है। भारतवर्ष में इस संप्रदाय को ले आने का श्रेय किसी ने अली अबू यूसुफ कलंदर को दिया है। रे आ ई पृष्ठ 51 पृष्ठ संख्या 510 ये बू अली कलंदर के नाम से विख्यात थे और स्पेन के रहने वाले थे। कहा जाता है कि उनका संबंध चिश्ती और बख्ताशी दोनों संप्रदायों से था, लेकिन बाद में इन्होंने इन दोनों को छोड़ दिया और एक स्वतंत्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसी ने इन्हें पार्शियन इराक का रहने वाला बतलाया है और नाम अबू अली कलंदर। पृष्ठ 282। इस संप्रदाय के प्रवर्तक के संबंध में भारत में प्रचलित एक परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक सईद खिज्र खमी कलंदर खपरादारी थे। सूफी पृष्ठ 310। इसमें रूमी शब्द इस बात का सूचक है कि वे रूम या तुर्किस्तान के थे। कहा जाता है कि ये अब्दुल अजीज मक्की के शिष्य थे। अब्दुल अजीज मक्की के बारे में सूफियों का विश्वास है कि वे अमर हैं तथा अब्राहम के समय से ही वे संसार में वास कर रहे हैं। कहा जाता है कि पहले पहल उन्होंने कलंदर शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ किया। रोज के दर पृष्ठ 299 अनुसार इस संप्रदाय के प्रवर्तक कलंदर यूसुफ अंदलुसी थे, जो स्पेन के अंदलुसिया स्थान के रहने वाले थे। रोज का कहना है वही पृष्ठ 299 कि पहले पहल उन्होंने ही कलंदर शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ किया और इसका अर्थ विशुद्ध सोना है। विशुद्ध सोना कहने का तात्पर्य हृदय आत्मा की विशुद्धता से है। किसी किसी का कहना है कि भारतवर्ष में से ले आने का श्रेय सईद नजमुद्दीन गौसुद्दहर कलंदर को है। कहते हैं कि वे पहले निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और बाद में उन्हीं के कहने से रूम में जाकर खिज्र रूमी के शिष्य हो गए। खिज्र रूमी ने फिर उन्हें भारतवर्ष में भेज दिया। सूफी पृष्ठ 311-12। कलंदर शब्द की उत्पत्ति और अर्थ को लेकर नाना प्रकार के मत पृष्ठ संख्या 511 प्रकट किए गए हैं। हम ऊपर देख चुके हैं कि इसका अर्थ विशुद्ध सोना किया गया है। रोज ने इस शब्द पर बड़े विस्तार से विचार किया है। दर पृष्ठ 169-172। इसे फारसी शब्द कलांतर का रूपांतर माना गया है। कलांतर का अर्थ किसी स्थान का प्रधान होता है। इसे करिंद या कलंदारी से भी संबंधित माना गया है। कलंदारी का मतलब एक प्रकार का बाजा है। इसे तुर्की शब्द काल से भी निकला मानते हैं। काल का अर्थ विशुद्ध है। इस शब्द का चाहे जो भी अर्थ हो, लेकिन इसका प्रयोग फकीर के लिए, परमात्मा के दास के लिए किया जाता है। कहते हैं सईद नजमुद्दीन गौसुद्दर कलंदर, जिन्हें भारतवर्ष में इस संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं, 200 वर्षों तक जीवित रहे और उनकी छाती से हू की आवाज निकलती रहती थी। कहते हैं कि इंग्लैंड और चीन की यात्रा इन्होंने की थी। 42 दफे मक्का हज करने के लिए गए थे। कहते हैं 40 वर्षों तक नाना प्रकार की कृच्छ साधना में ये लगे रहे। 30 वर्षों तक एक ही पत्थर पर इनके रहने की बात कही जाती है। यह भी लोगों का कहना है कि 40 वर्षों तक इन्होंने उपवास किया था और नित्य संध्या के समय बेर की पत्ती चबाकर रह जाते। इनकी मृत्यु सन 1432 ईस्वी में हुई। प्रायः प्रत्येक साधक के नाम के साथ इस प्रकार की कहानियां जुड़ी हुई हैं। यह मध्ययुग की एक विशेष प्रवृत्ति थी। कुतुबुद्दीन विनादल कलंदर सरंदाजे गौसी इनके उत्तराधिकारी हुए। उनके बारे में भी लोगों का कहना है कि वे 145 वर्ष तक जीवित रहे। कहते हैं कि जिक्र के समय उनका सिर अलग हो जाता था। शरफुद्दीन बू अली कलंदर के बारे में कहा जाता है कि वे एक उच्च कोटि के साधक हो गए हैं और परमात्मा की उन पर विशेष कृपा थी। उनकी शक्ति पर लोगों को इतना अधिक विश्वास था और उनके प्रति लोगों की इतनी अधिक श्रद्धा भक्ति थी कि उनकी कब्र को लेकर पानी पृष्ठ संख्या 512 पत और करनाल के लोगों में काफी मतभेद पैदा हुआ। वे करनाल में दफनाए गए, लेकिन कहते हैं कि पानीपत वालों ने उनके शव को उखाड़कर पानीपत में दफनाना चाहा। कहते हैं कि करनाल की कब्र से वे शव नहीं निकाल सके, केवल कुछ ईंट पत्थर ही निकाल सके, लेकिन पानीपत में आकर उन लोगों ने शव ढोने वाले बक्सों में उनके शव को पाया। चाहे जो हो, दोनों स्थानों में उनका उर्स आज भी होता है। कहते हैं कि जब वे एक बार धर्मोपदेश कर रहे थे तो जैसे उन्होंने सुना कि कोई कह रहा है कि क्या वे इसी काम के लिए बनाए गए हैं, उन्होंने धर्मोपदेश करना छोड़ दिया, धर्म ग्रंथों को फेंक दिया और पानी में खड़े होकर वर्षों तपस्या की। तपस्या पूरी होने पर परमात्मा से उन्होंने यही मांगा कि वे उसे ही चाहते हैं और उसे छोड़कर उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपने शिष्य इख्तियारुद्दीन के पास बहुत सी चिट्ठियाँ लिखी थी जिनसे उनके विचारों पर प्रकाश पड़ता है। इक्तिबासुल अनवार के अनुसार ये दिल्ली की कुवतुल इस्लाम मस्जिद के मीनार में लोगों को शिक्षा दिया करते थे। कहते हैं कि 30 वर्षों तक इस प्रकार से लोगों को वे शिक्षा तथा धर्मोपदेश देते रहे। ग्लोब अंट्रा का प्रथम भाग पृष्ठ 619। बेशरा संप्रदाय में कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनका संबंध सुहरावर्दी संप्रदाय से है। इन संप्रदायों में लाल शाहबाजिया, मूसा सुहागिया, रसूल शाही आदि हैं। लाल शाहबाज के नाम के साथ लाल शाहबाजिया संप्रदाय का नाम जुड़ा हुआ है। लाल शाहबाज के संबंध में बहुत कम सामग्री मिलती है। ये घूमते फिरते फकीर थे। लाल वस्त्र धारण करने के कारण लाल शब्द का प्रयोग इनके नाम के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि लाल शाहबाज ने इस्लाम के धार्मिक कृत्यों की कभी भी परवाह नहीं की। वे शराब पीते थे और उनके अनुयायियों का कहना है कि उनके स्पर्श मात्र से शराब पानी बन जाती थी। उनकी दुष्चरित्रता के संबंध में लोगों का कहना है कि ये सब उनके लिए दिखावे की चीजें थी। पृष्ठ संख्या 513। बाहर से वे ऐसा रूप बनाए हुए रहते थे जिसमें लोग उनकी आध्यात्मिक शक्ति को न जान जाए। बर्टन ने पृष्ठ 142 एक लाल शाहबाज की चर्चा की है और बतलाया है कि वे सिंध के थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। बर्टन के अनुसार उनकी मृत्यु सन 1274 ईस्वी में सहवान में हुई और लोग प्रत्येक वर्ष उनके मकबरे का दर्शन करने जाते हैं, जहां खूनबट्टी जाति की एक लड़की की शादी उस मकबरे के साथ की जाती है और फिर वह शादी नहीं करती। लाल शाहबाज की मृत्यु सन 1324 ईस्वी में भी हुई बताई जाती है। सूफी पृष्ठ 247। मूसा सुहागिया या सुहागिया संप्रदाय का नाम मूसा शाही सुहाग के नाम से आया है, जो एक बहुत बड़े संत थे। वे ईसा की 15वीं शताब्दी के अंत में हुए। कहा जाता है कि वे सईद जलालुद्दीन सुर्खपोश के उत्तराधिकारी थे। इस संप्रदाय का मुख्य स्थान अहमदाबाद है। सुहाग शब्द का प्रयोग उनके नाम के साथ संभवतः इसलिए हुआ है कि वे लोगों की भीड़ से बचने के लिए स्त्री का वस्त्र धारण करते थे। स्त्री के वेश में वे रहते थे। कहते हैं कि अपने आध्यात्मिक शक्ति को छिपाए रखने के लिए ये स्त्री के वेश में हिजड़ों के दल में रहते, जिनका काम नाचना गाना था। इनके अनुयायी स्त्री वेश में रहते हैं, स्त्रियों के गहने पहनते हैं। वे चूड़ी हार तथा नर्तकियों से भीख लेते हैं। जब कोई भीख देने से इनकार कर देता है, तब वे चूड़ियाँ फोड़ कर चबाने लगते हैं। वे तंबूरा सितार सारंगी बजाते हैं। गाने में भी वे निपुण होते हैं। अपने मुर्शिद के सामने नाचते गाते हैं। उनका दावा है कि अपने संगीत के बल पर वे वर्षा कर सकते हैं, पत्थर पिघला सकते हैं। कहा जाता है कि शाह मूसा ने अपनी प्रार्थना से वर्षा की थी। अहमदाबाद में अनावृष्टि हुई। लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें। उन्होंने प्रार्थना की, ए मेरे पति, अगर अभी तुरंत तुम पृष्ठ संख्या 514 वर्षा नहीं भेज रहे हो तो मैं सुहागिन के इन सभी आभूषणों को दूर कर दूंगा। कहते हैं कि उस समय वृष्टि हुई और लगातार कई दिनों तक होती रही। उनकी मृत्यु सन 1449 ईस्वी में हुई। इस्लाम के बंधनों से वे भी मुक्त थे। रोजा नमाज के प्रतिबंधों से वे परे हो गए थे। रसूल शाही संप्रदाय के जन्मदाता रसूल शाह नामक एक संत थे, जो अलवर के पास बावलपुर के थे। इनके संत होने की कहानी बड़ी विचित्र है। इस संप्रदाय के फकीरों का कहना है कि औरंगजेब के तुरंत बाद के उत्तराधिकारियों के समय में नियामतुल्ला नामक एक धनी जौहरी था, जो अलवर से 20 मील दूर बहादुरपुर का रहने वाला था। एक बार वह अपने व्यवसाय के सिलसिले में मिस्र गया और वहां पर दाऊद नामक एक संत से मिलने गया। उनकी ख्याति वह पहले ही सुन चुका था। दाऊद शराब पीते थे और उनका आचरण लोगों की दृष्टि में बहुत निकृष्ट दर्जे का था। जब नियामतुल्ला उनके पास गया, तब उन्होंने उसे शराब पीने के लिए दी। संत के सम्मान के लिए वह उसे पी गया, लेकिन पीने के साथ ही जैसे उसका काया पलट हो गया। उसे ईश्वरीय ज्ञान हो गया और सब कुछ का त्याग कर वह फकीर हो गया और दाऊद की सेवा में रह गया। एक दिन दाऊद ने नियामतुल्ला से कहा कि उस दाऊद की मृत्यु का समय आ गया, लेकिन उसकी आत्मा नियामतुल्ला के भीतर प्रवेश कर जाएगी। दाऊद ने यह भी कहा कि उसकी मृत्यु के पश्चात नियामतुल्ला अलवर चला जाए, वहां उसे सईद रसूल शाह मिलेगा। रसूल शाह को शिष्य बनाकर आध्यात्मिक ज्ञान बताने के लिए भी दाऊद ने कहा। यह सभी कह लेने के बाद ही दाऊद की मृत्यु हो गई और नियामतुल्ला अलवर चला आया। दाऊद ने बतलाया था कि रसूल शाह एक नए संप्रदाय का प्रवर्तक होगा। अलवर में आकर नियामतुल्ला ने सईद रसूल शाह को बुलवा भेजा और उसे शराब पीने के लिए दी। उसे पीने के बाद रसूल शाह का भी जीवन परिवर्तित हो गया। उसने अपना सिर मुड़वा दिया, मूछें और भौहों को भी साफ करा दिया और नियामतुल्लाह का शिष्य हो गया। पृष्ठ संख्या 515। कई वर्षों तक वह पीर की सेवा में रहा। एक दिन दाऊद की नाई नियामतुल्लाह ने भी रसूल शाह से कहा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी आत्मा रसूल शाह में प्रवेश कर जाएगी और वह रसूल शाह अपने नाम पर एक संप्रदाय की प्रतिष्ठा करेगा। रसूल शाह ने नियामतुल्लाह की मृत्यु के बाद अपने नाम पर रसूल शाही संप्रदाय चलाया। इस संप्रदाय वाले सिर पर एक उजला या लाल रुमाल बांधते हैं। एक रुमाल में भस्म बांधे हुए रहते हैं, जिसे वे अपने शरीर और चेहरे पर मलते हैं। वे अपने सिर, अपनी मूछों और भौहों को मुड़ाते हैं, काठ की चट्टी पहनते हैं और गर्मी के दिनों में हाथ में पंखा लिए फिरते हैं। वे शराब पीना धर्म विरुद्ध नहीं मानते। उनकी दृष्टि में नशा सेवन धार्मिक कृत्य है। पीने की इस आदत ने उन्हें सिख सरदारों के निकट ला दिया और कहते हैं कि रणजीत सिंह ने मद के लिए उन्हें 200 रुपए मासिक की रकम निश्चित कर दी थी। यह संप्रदाय अल्पसंख्यक ही है। इस संप्रदाय वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते। लोगों का ख्याल है कि इस संप्रदाय वाले निर्धन नहीं है। वे भीख मांगते हुए नहीं देखे जाते। उनमें बहुत से साहित्य के प्रेमी भी हैं। पंजाब में इनका प्रधान स्थान लाहौर में लंदा बाजार के निकट एक इमारत है। रसूल शाहियों का यह वृत्तांत रोज के आधार पर है। जिसने जान है सुभान ने सूफी पृष्ठ 252 कहा है कि वह तकीकाते तहकीकाते चिश्ती नामक पुस्तक में दिए हुए उनके वृत्तांत से पूरा का पूरा मिलता है। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी की 17वीं पीढ़ी में रसूल शाह पढ़ते हैं। इन बेशरा संप्रदाय वालों में मदारी संप्रदाय कुछ अच्छी ख्याति वाले नहीं हैं। यह संप्रदाय मदारी अथवा तबकातिया के नाम से भी परिचित है। इसके प्रवर्तक सुप्रसिद्ध संत जिंदा शाह मदार कहे जाते हैं। पृष्ठ संख्या 516। लोगों का विश्वास है कि वे अमर हैं, इसलिए उन्हें जिंदा कहते हैं। संप्रदाय वाले काले कपड़े पहनते हैं। इनके सर के बाल उलझे हुए होते हैं, जिन्हें वे बांध लेते हैं। ये जब भीख मांगने निकलते हैं, तब लोग इनके भय से इन्हें जल्दी भीख देकर हटा देना चाहते हैं। दुकानदारों को भीख के लिए बहुत गंदी गालियाँ देते हैं अथवा अपना भय दिखाते हैं। दुकानदार इन्हें शीघ्र ही भीख दे दिलाकर छुट्टी पाने की चेष्टा करते हैं। अपने पैरों में वे जंजीर बांधे हुए रहते हैं और जब दुकानों पर भीख मांगने जाते हैं, तब उसे आगे की ओर उछालते हैं और फिर खींच लेते हैं। वे जादू और हाथ के सिपाही दिखाते हैं। जिंदा शाह मदार का नाम पटियाला में प्रचलित किंवदंती के अनुसार बदीउद्दीन मदार था और वे अबू इसहाक शामी के पुत्र थे। एक वृत्तांत के अनुसार इनके पिता का नाम ख्वाजा कस्मी था। ग्लव पंटरा का प्रथम खंड पृष्ठ 637। पटियाला में उनका मीर डेरा प्रधान स्थान बनूर में मुराद अली शाह का तकिया है। भटिंडा के पास हाजी रतन के मकबरे से भी मदारियों का संबंध है। कहते हैं कि जिंदा शाह मदार यहूदी थे और उनका जन्म अलप्पो में सन 1050 ईस्वी में हुआ और मृत्यु मकनपुर में। मृत्यु के समय उनकी उम्र 383 वर्ष की कही जाती है। ग्लव पंटरा का तृतीय खंड पृष्ठ 43। मिराते मदारी के आधार पर जाने सुभान ने शाह मदार के संबंध में निम्नलिखित वृत्तांत लिखा है। सूफी पृष्ठ 302। मिराते मदारी का आधार शाह मदार के शिष्य महनूत कंतूरी द्वारा लिखित ईमाने महमूदी नामक ग्रंथ बताया जाता है। कहा जाता है कि शाह मदार के जन्म की सूचना उनके पिता को मूसा ने स्वयं दी थी। मूसा ने नामकरण भी सपने में ही कर दिया था। मूसा ने इनका नाम बदीउद्दीन बतलाया। बचपन में शाह मदार ने हदीक पृष्ठ संख्या 517 शामी नामक एक यहूदी से शिक्षा प्राप्त की। हदीक के बारे में कहा जाता है कि वह बड़ा ज्ञानी पंडित था। उसके बहुत से चमत्कारों की भी बात कही जाती है। शाह मदार के माता पिता उनके बचपन में ही मर गए। अपने गुरु के आदेश से वे मक्का चले गए और वहां पर कुरान हदीस आदि का गंभीर अध्ययन किया। इतनी विद्या प्राप्त करने पर भी उन्हें शांति नहीं मिली और वे मक्का छोड़कर अपने घर सीरिया में लौटने का विचार कर रहे थे। काबा की परिक्रमा करते समय जैसे उन्हें सुनाई पड़ा, अगर परमात्मा की खोज कर रहे हो तो मोहम्मद की कब्र पर मदीने चले जाओ। वहां जाकर उन्होंने पैगंबर की कब्र को चूमा। उन्हें सुनाई पड़ा कि ए बदीउद्दीन शाह मदार, परमात्मा की इच्छा हुई तो शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद ही मोहम्मद के उन्हें दर्शन हुए और साथ ही अली से भी उनका साक्षात्कार हुआ। अली के सामने ही हजरत मोहम्मद ने उन्हें इस्लाम धर्म के रहस्यों को समझाया और अली की देखरेख में उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद शाह मदार नजफ अशरफ गए, जो अली के अनुयायियों का केंद्र था। वहाँ अली ने इन्हें इमाम महदी से मिलाया। इमाम महदी 12वें अदृश्य इमाम हैं। इमाम महदी ने 12 स्वर्गीय ग्रंथों से उन्हें परिचित कराया। इन 12 ग्रंथों के नाम इस प्रकार से हैं: तूरा, जबूर, फुरकान, इंजील, रकूरी, जाजरी, दशरी, वलियन, मिरात, एनुर्रब, सिर्रे माजिर और मजहरे अलिफ। इसके बाद महदी उन्हें अली के पास ले गए। अली ने उन्हें अपना खलीफा मानकर मदीना भेज दिया। वहाँ से हजरत मोहम्मद की अदृश्य शक्ति ने उन्हें भारतवर्ष में आने का आदेश दिया। शाह मदार का एक दूसरा जीवन वृत्तांत भी मिलता है, वही पृष्ठ 304। उसके अनुसार वे कुरैश वंश के अरब थे और पिता की तरफ से वे अबू हुरैरा की वंश परंपरा में पढ़ते हैं और माता की तरफ से अब्दुल रहमान बिन औफ की वंश परंपरा में पढ़ते हैं। ये दोनों हजरत मोहम्मद के साथ रहने वालों में थे। पृष्ठ संख्या 518। इन दो वृत्तांतों से यह तो पता चल ही जाता है कि वे अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय संत थे। वैसे यह कहना कठिन है कि उनका ठीक वृत्तांत कौन सा है। कहा जाता है कि जब बदीउद्दीन भारतवर्ष में आए तो वे पहले पहल अजमेर गए। वहाँ उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन की आत्मा ने उनके भविष्य के कार्यक्रम से परिचित कराया। अजमेर से वे मकनपुर चले गए। मकनपुर कानपुर से 40 मील की दूरी पर है। कहते हैं कि सन 1485 ईस्वी में इनकी मृत्यु वहीं पर हुई, लेकिन उनके जन्म और मृत्यु की तिथि के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है। संतों के अनुयायियों की यह प्रवृत्ति रही है कि उनकी शक्ति और विशिष्टता को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए नाना प्रकार के चमत्कारों की कहानियां गढ़ लेते हैं और उनकी उम्र को अधिक से अधिक बढ़ाकर बताने की चेष्टा करते हैं। अतएव इस संबंध में निश्चित रूप से किसी बात को मान लेना कठिन है। शाह मदार का एक तीसरा जीवन वृत्तांत कुछ इस प्रकार का है। ग्लव पंटरा का प्रथम भाग पृष्ठ 638। पंजाब में मियां बीबी संप्रदाय के अनुयायी जो गान करते हैं, उनमें शाह मदार का जिक्र बराबर रहता है। इस परंपरा के अनुसार वे रूम के एक शेख थे, उनका नाम बदरुद्दीन था। वहां से वे भारतवर्ष में चले आए और उस काल के बादशाह के मस्खरे के साथ टिक गए। जिसके साथ वह ठहरे थे उसकी लड़कियां उन्हें मियाँ कहा करती और वे उन लोगों को बीबी कहा करते। जब से उन्होंने उन लोगों के घर में बसेरा लिया तब से राजा की कृपा उस मस्करे पर अधिक हो गई। उसने समझा कि शाह मदार की शक्ति के कारण संभव हुआ। दरबार में उस मस्करे की इस लोकप्रियता से एक मंत्री को बड़ी ईर्ष्या हुई और उसने बादशाह के कान भर दिए। बादशाह ने एक दिन मस्करे को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया। मस्करे ने मियाँ शाह मदार की सहायता चाही। अपनी शक्ति के द्वारा शाह मदार ने एक बाघ पृष्ठ संख्या 519 दरबार में भेज दिया। उस बाघ ने उस मंत्री को मार डाला। बादशाह को बाद में मियाँ की शक्ति का पता चला लेकिन मियाँ को यह बात अच्छी नहीं मालूम हुई। वह वहाँ से चले जाने के लिए तैयार हो गए। इस बीच वे सभी लड़कियाँ उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गई थी। जब मियाँ ने देखा कि वे लड़कियाँ उनके साथ मरने जीने को तैयार हैं तब वे उन अविवाहिता कन्याओं के साथ अदृश्य हो गए। यह ठीक पता नहीं चलता कि किस स्थान से इस घटना का संबंध है। कहते हैं कि मियाँ बीबी की कहानी का यही उद्गम है। कहते हैं कि मदार शाह अविवाहित थे और स्त्रियों के संपर्क में नहीं आए थे। वे काले वस्त्र का व्यवहार करते थे। वे जादूगरों के पीर माने जाते हैं। वही पृष्ठ 399। उनके मकबरे पर हिंदू मुसलमान सभी तीर्थयात्रा करने जाते हैं। स्त्रियां वहां नहीं जाती। लोगों का कहना है कि अगर वे वहां चली जाएं तो उन्हें असह्य पीड़ा होती है। लगता है जैसे वे आग की लपट के बीच में हों। उनके नाम पर लोग बच्चों के गले में सोने चांदी की बद्दी पहनाते हैं। लोग उनके जन्मदिवस पर आटे की बनी हुई चीज़ें मांस तथा अन्य खाने की चीज़ें चढ़ाते हैं। कुछ लोग उनके नाम पर आग में चलते हैं। इसको धमाल कूदना कहते हैं। धमाल का मतलब पुण्य स्थान है। इस अवसर पर खूब अधिक आग जलाकर मदारी फकीरों को बुलाते हैं। दल का नेता और अन्य फकीर फातिहा पढ़ते हैं। इसके बाद चंदन की लकड़ी आग में डालते हैं। पहले दल का नेता आग में कूदता है, इसके बाद और दूसरे फकीर। उस समय वे दम मदार कहते रहते हैं। उनका विश्वास है कि वैसा कहने से उन्हें कुछ भी नहीं होगा। सांप के काटने और बिच्छू के डंक मारने पर भी वे दम मदार कहते हैं और उनका विश्वास है कि इससे विष का असर नहीं रहेगा। आग से जब वे निकलते हैं तब उनके पैर को दूध और बाद में पानी से धोते हैं और कहा जाता है कि उनके पैरों में किसी प्रकार का घाव नहीं होता। पृष्ठ 195-196 पृष्ठ संख्या 520। उनके जन्मदिवस पर लोग एक त्यौहार मनाते हैं जिसे गाय लूटना कहते हैं। उक्त अवसर पर संत के नाम पर एक काली गाय की मन्नत करते हैं और जबह कर मांस फकीरों को बांट देते हैं। उनके उर्स के अवसर पर लोग रात भर जागते रहते हैं और उनके गुणों का गान करते हैं। उस रात को लोग बहुत से दीप जलाते हैं। मदारिया संप्रदाय वाले पश्चिमी पंजाब में नहीं के बराबर हैं। उस हिस्से में बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता है लेकिन पूर्वी पंजाब में ये बहुत अधिक पाए जाते हैं। अंबाला, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, अमृतसर, सियालकोट तथा फिरोजपुर आदि में ये सर्वत्र पाए जाते हैं। मलंग संप्रदाय के संबंध में ठीक संप्रदाय के इतिहास की दृष्टि से कुछ कहना कठिन है। साधारणतः इसे मदारी संप्रदाय की शाखा मानते हैं। मलंगों के बारे में कहा जाता है कि वे जमन जत्ती के अनुयायी हैं। इन अनुयायियों में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। लगता है जैसे जमन जत्ती किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि यह यवन यति शब्द है। संभव है कि कोई मुसलमान साधक हिंदू यति की तरह से अपना जीवन बिताता रहा और उसके बहुत से अनुयायी हो गए हों लेकिन किसी निश्चित प्रमाण के अभाव में कुछ भी कहना कठिन है। कहते हैं कि जन्म जत्ती जिंदा शाह मदार का शिष्य था। मलंग शब्द किसी भी ऐसे साधु के वेश में भीख मांगने वाले के लिए प्रयुक्त होता है जो किसी भी धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत न हो। मलंग खूब भंग खाते हैं, चरस पीते हैं, धुनी रमाए हुए रहते हैं, शरीर में खाक मलते रहते हैं, लंगोटी धारण करते हैं, माथे पर लंबे उलझे खेश रखते हैं और उन्हें बांधते हैं। सियालकोट के पसरूर तहसील में झंगी शाह खाकी के मकबरे पर मलंग बराबर जाते हैं। क्लब पंट्राका तृतीय खंड पृष्ठ 57। कमर में ये जंजीर या रस्सी की करधनी लगाए रहते हैं। पृष्ठ संख्या 521। इन विभिन्न संप्रदायों में हम ऐसे अनेक संप्रदाय पाते हैं जिनमें सनातन पंथी इस्लाम की पाबंदियों को छोड़ देने की प्रवृत्ति है। वैसे प्रारंभ में कुछ ऐसे साधक थे जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को लोगों से छिपाए रखने के लिए बहुत ऐसे कार्य करते जिससे लोग उन्हें साधक न जान पावे और उन्हें अधार्मिक समझकर उनके पास न आवे। उन साधकों का उद्देश्य वास्तव में उन धार्मिक पाबंदियों को छोड़ना नहीं था बल्कि लोगों से पिंड छुड़ाने का एक दिखावा मात्र था। हुजवीरी ने एक ऐसे साधक का जिक्र किया है जिससे उस प्रकार के साधकों के दृष्टिकोण का पता चलता है। अबू नामक एक सूफी साधक के बारे में कहा जाता है कि वे हिजाज से लौट रहे थे। उनके रास्ते में रई नामक एक नगर पड़ता था। जब वे उस शहर में पहुंच रहे थे तब लोग उनकी आवभगत के लिए उनके पास पहुंचे। इससे उनके ध्यान में बाधा पड़ी। परमात्मा की ओर से उनका ध्यान खींचा। अतएव जब वे बाजार में आए तो एक रोटी निकालकर खाने लगे। वह रमजान का महीना था, लोग रोजा रख रहे थे। अबू यजीद को वैसा करते देख लोगों ने धर्म विरोधी समझ उनसे अलग हट गए। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि उनके इस धर्मानुमोदित कृत्य को देखकर भी लोग उनसे अलग हो गए। वास्तव में यात्रा में रोजा रखने की पाबंदी नहीं रहती। उनका रोजा नहीं रखना धर्म के विरुद्ध नहीं था। कश्फ पृष्ठ 65। इस प्रकार के साधकों को सूफी मलामती कहते थे और उनके इस प्रकार के कृत्य को मलामत। पहले यह समझा जाता था कि इस प्रकार के साधक एक विशेष कोटि के हैं और परमात्मा के विशेष प्रिय पात्र हैं, अतः उनके लिए इस प्रकार के दिख पड़ने वाले धर्म विरोधी कार्य कुछ अर्थ नहीं रखते। उनके लिए यह भी समझा जाता था कि साधारण मनुष्यों की तरह उन्हें धर्म की पाबंदियों में बंधना कोई जरूरी नहीं है। बाद में मलामती पृष्ठ संख्या 522 एक संप्रदाय विशेष हो गया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक हम दुनूल कसार थे। ये मिस्र के सुप्रसिद्ध साधक जून नून के शिष्य थे। कहा जाता है कि जून नून ही पहले संत थे जो मलामतियों की तरह आचरण किया करते थे। इस संप्रदाय को कुस्तुनतुनिया में ले जाने वाले शेख हास थे। वहां पर उन्हीं के नाम पर इस संप्रदाय का नाम हाजबी संप्रदाय पड़ा। मलामती संप्रदाय का नाम लेकर बहुत से आडंबर करने वाले भी बाद में हुए। वे कपटाचारी थे। मलामती संप्रदाय के अंतर्गत भी बहुत से छोटे छोटे उप संप्रदाय हो गए। कहा जाता है कि जो सभी सुखों से मोह मोड़कर परमात्मा की ओर ही उन्मुख है, वह अगर कुछ ऐसा आचरण करे जो देखने में धर्म के विपरीत मालूम हो लेकिन वास्तव में अधार्मिक न हो, तो उससे कुछ आता जाता नहीं और वह साधक वास्तव में श्लाघ्य है।